તારીખ 11/5/1992, શ્રી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રકાશ, બોલ નંબર 275 અને 274 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 120.
जिस रस की रुचि होती है उस रस की जिस निमित्त से कर्तकारी अनुमोदना रूप पुष्टि मिलती है उसी के संग का भाव जीव को होता है। देव शास्त्र गुरु शांत रस के निमित्त है, इसलिए शांत रस के रुचि वाले जीव को उनके संग का भाव आता है। जीव क्यों दूसरे का संग करता है उस कारण का निर्देश करेगा कि जो कुसंग करता है उसको दोष की रुचि है। जीव का संग करता है कुसंग करता है इसका मतलब क्या है कि उसको दोष की रुचि है। क्रोध करना करवाना और अनुमोदना तीनों आ जाएगा उसको। और सत्संग कौन करता है तो जिसको सबकी रुचि है वो सत्संग करेगा। एक जनरल सिद्धांत ये हो गया कि जिस रस की रुचि होती है उस रस की जितनी जिस निमित्त से पुष्टि मिलती है उसी के संग का भाव जीव को आएगा। मैं उसका संग करूँ। सामान्यतया मित्राचार्य किसने होती है, सम प्रकृति वाले होते हैं। दो लोभी हो तो मित्र हो जाएगा, दो उड़ा होगा तो मित्र हो जाएगा, और एक लोभी और एक उड़ा होगा तो मित्रता नहीं जमेगी, क्यों तो मेल नहीं खाएगा उसका, क्योंकि उसका संग करने का भाव नहीं आएगा उसको, नहीं बैठ पड़ेगा उसके साथ, पते नहीं पटेगा ऐसे। वैसे रस की रुचि जिस रस की रुचि होती है ऐसा रस वाले का ही संग करने का कारण होगा। अपना अपना रस का पुष्टि मिलता है, पसंद मिलता है, इसलिए देवशास्त्र गुरु शांत रस के लिए है। देवशास्त्र गुरु शांत रस के लिए है, इसलिए उनके चिंता भाव आता है। उनको रोकना बात नहीं है, देव गुरु शास्त्र शांत रस के लिए है, और शांत रस वाला जिसके रुचि उनके भाव का उसका संज्ञान करने का भाव आएगा। जिसको जैसा रस वैसा अपना स्थान ऐसा अपना द्रव्य वैसा उनका संग ये सब उसका दूर हो जाएगा। निर्विकल्पता में शांत रस, निर्विकल्प दशा में शांत रस होता है। दशा का दो पहलू है, भिन्न भिन्न पहलू है, जुदा जुदा परखा से दशा एक से ना परखा जुदा जुदा। निर्विकल्प में विकल्प का अभाव और विकल्प के साथ अशांति जुड़ी हुई है। अशांति का अभाव हुआ तो शांति भी प्राप्ति हुई, विकल्प एक पहलू है, शांति दूसरा पहलू है, शांति दूसरा पहलू है। ये तो शक्कर है, सफेद भी है और मीठी भी है, तो सफादे सफेदा ही मैंने मीठा पाना ऐसी बात पहलू अलग है। इस जीव को किसका संग करने का भाव होता है छोटे बच्चे तो गैदरिंग होता है, अपनी उम्र के बच्चे के साथ खेलने लग जाते हैं, अपनी जाकर देखो इसको कंपनी नहीं मिली, इसका मतलब क्या? तो उसकी जो रमत है उसमें उसका रस का कुछ ना कुछ नहीं दिया है कहीं। सिद्धांत जो है वो तो बराबर देखने में आया, कार्य अनुमोदना से पुष्टि मिले उसका स्थान करेगा, तो अनुमोदना करने वाला मिले तो आपका रास्ता तो नेत्री करेगा उसका स्थान करेगा, अनुमोदना करेगा। मेरे लिए मानस तो सिद्धांत सिद्ध था, निश्चयाभास के निषेध के लिए जब ऐसा कहने में आता है कि शून्य का भाव तो गंधर्व को भी आता है और शास्त्र अध्ययन का भाव तो मुनियों को भी आता है, इत्यादि कथन आते हैं व्यवहार में प्रसन्नता रहते हैं। तो अज्ञानी को व्यवहार पक्ष की पुष्टि हो जाती है, क्या होता है जिसको पक्ष है व्यवहार का उसको प्रसन्न मिल जाता है। लिखने वाले ने तो एक परिस्थिति का बयान किया तो कोई व्यवहार पक्ष की किसी को पुष्टि नहीं कराने से, लेकिन किसके गुणस्थान में कैसे कैसे मान्य परिणाम होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, किस अद्भुत होते हैं, इसका एक विवरण आता है। तो अज्ञानी व्यवहार पक्ष वाला है उसको अपना पक्ष हो जाता है, अपना पक्ष की पुष्टि हो जाती है, मजबूत हो जाता है, और निश्चयाभास हो जाने का उसको डर भी लगता है, व्यवहाराभासी को निश्चयाभास होने का डर होता है और निश्चयाभासी को व्यवहाराभास होने का डर होता है। जो व्यवहार की बात आती है तो उनको व्यवहाराभास हो जाएगा, व्यवहाराभासी को क्या होता है कि ऐसी बात सुनेंगे तो निश्चयाभासी हो जाएगी, दोनों का अपना प्रतिपक्ष का डर है, बात दोनों शास्त्र में आएगी, अपना पक्ष की पुष्टि करेगा प्रतिपक्ष का भय रखेगा। इससे निश्चय पर जोर नहीं दे सकता कौन, व्यवहार आपासी और व्यवहार में तनिज में खींच जाता है, मारवाड़ी भाषा से व्यवहार में तनिज जाता है, खींच जाता है, राग में आदर भाव, व्यवहार आपासी के राग का आदर है उसके मन में राग का आदर हो जाता है। और उसकी गहराई में क्या बात है, गंधर्व देव को भगवान के वाणी सुनने का विकल्प आता है, वाणी जब हो जाती है लेकिन निश्चय का निश्चय तो कहीं किया ही नहीं, क्योंकि निश्चय का परम आदर हो चुका है, इसलिए एक तत्व भी निश्चय का निश्चय नहीं किया है, लेकिन निश्चय आपका निश्चय तो व्यक्त किया है, क्योंकि वो अवगुण है, गुण नहीं है। निवारा भाषी जी और निश्चय भाषी जी दोनों आभास एक दोष है, निश्चय भाषा निषेध किया तो निश्चय भाषा को देश क्या होता है, तो निश्चय का तो आदर करते नहीं और व्यवहार का निषेध करते, क्या करता है निश्चय निषेध, व्यवहार का निषेध करेगा और निश्चय का आदर नहीं करेगा, फिर क्या हो जाएगा पाप के परिणाम में वो चला जाएगा, शुभ का निषेध करेगा शुद्धता में आएगा नहीं और अशुभ में परिणाम हो जाएगा, तो उसको कहने में आता है कि ऐसी बात नहीं है, शुभ में आ जाए शुभ को छोड़ करके, इसलिए तो हमने कहीं निषेध शुभ का किया ही नहीं, शुभ का निषेध तो हमने शुद्धता का प्रयत्न के काल में सहज होता है उसकी बात बताइए, निषेध किया है शुभ का कि जब किसी मनुष्य को या किसी ज्ञानी जीव को शुद्धता में आने के लिए शुभ का भी निषेध रहता है, वो बात हमने बताई, हमने अशुभ नुमा चले जाने के लिए वो बात तो कही नहीं थी, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ता है और व्यापार धंधा में लगता है या अखबार पढ़ने में लगता है या दूसरा दूसरा कोई पढ़ता है जो पाप का कारण है, तो उसको कहते हैं शास्त्र पढ़ने का रास्ता ढूंढने के लिए ऐसा उसको उलाना देते हैं, फिर तो कोई जैसा नहीं है, ये तो मामूली है, बहुत मामूली है, और उनके जैसा वाले घंटर होते हैं उनके भी शास्त्र का भाव आता है, पुण्य का भाव आता है, तो उनको निषेध सहित आता है, ऐसे किस प्रकार से आना चाहिए, आना चाहिए लेकिन निषेध सहित आना चाहिए, शुद्धता भाव के काल में शुद्धता का प्रयास बरतना चाहिए, जब उसका सही निषेध है ऐसी बात नहीं, हाँ शुद्धता ना प्रयास शुद्धता ना प्रयास है, ये शुद्धता से उठी जवाब आते हैं, जन के आपने दर्शन किसी जीव को स्वरूप का चिंतन चलता है, आत्मस्वरूप का परम पद का चिंतन चलता है, भावना कर बराबर अच्छा इसमें विकल्प है शुभ भाव है, और वो निर्विकल्प कब होता है कि वहां से वो सपने के लिए उसका प्रसाद तीव्र होता है, सब पर निर्विकल्प होगा, अगर वो इस भाव को ठीक मान करके तो करते रहेगा तो हार जाएगा, तो वो विकल्प तो उनका उच्च कोटि का है, जो उसका विकल्प है वो तो उच्च कोटि का है, तो ऊंचे के ऊंचे दरजे का विकल्प से भी उसको पिसने के प्रयत्न प्रसाद की तैयारी हो गई वो निर्विकल्प हो जाए, ये तो सीढ़ी चढ़ने जैसे अगर करते हैं सीढ़ी चढ़ते तो हम पैर रखते हैं सीढ़ी पर, तो पैर रख के खड़े रह गए तो दूसरा पैर से हमें ऊपर की सीढ़ी लेना है, वो सीढ़ी पर चढ़ना है, एक एक पैर से नीचे वाले सीढ़ी पर चढ़ते जाते हैं, ऊपर वाले को चढ़ते जाते हैं, अब कोई कुतर्क करेगा तो जब जब तुमको पैर उठा लेने का था तो रखा ही था, ये तो ठीक बात है, हमने पैर क्यों उठा लिया, पर अगर उठा लेना तो रखा क्या, पहले से नहीं रखना, ऊपर जाने की ये भी क्रम है, वही परिस्थिति होती है, तो जहां जहां ऊपर जाने का होता है नीचे की भूमिका का छोड़ करके ऊपर जाने का दूसरा नहीं चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि सुख का निषेध कौन करता है, शुभ भी बंद है अशुभ भी बंद भाव है, पर मोक्ष को बंद से प्रतिपक्ष है तो बंद का छेद किए बिना मोक्ष कैसे होगा। ते सुभा शुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव, मोक्ष स्वभाव कैसे तो प्रगट हो जाए, शुभ अशुभ का छेद करने से होगा, अशुभ का छेद करके शुभ का प्रतिपालन करके मोक्ष हो जाएगा, ऐसी बात क्यों नहीं लिखा, बात ऐसी क्यों नहीं लिखा कि अशुभ का छेद करके शुभ का पालन करके मोक्ष को प्राप्त करें, ऐसा क्यों नहीं लिखा। ते शुभ अशुभ छेद के लिए परिस्थिति जो है तो પર્યાય બુદ્ધિ છે ને પર્યાય વ્યવહાર એટલે વ્યવહાર પાસે વિદ્યાભાષી તો બહુ કમ હૈ, નિશ્ચયાભાષી વિશે કમ હૈ ઓર નિશ્ચય કમ વિદ્યાભાષી ક્યાં તો જો વ્યવહારાભાષી જો તો અનાધિકા હૈ, અનાધિકા વ્યવહારાભાષી તો નહીં ઓર જો નિશ્ચય કા શાસ્ત્ર પડતા હૈ ઓર સહી દેખાઈ હોય પરિસ્થિતિ મેં માર્ગ કો ગ્રહણ નહીં કરતા હૈ તો નિશ્ચયાભાષી કિન કિન ચીજ હોય फिर किसी का ध्यान जाता है शास्त्र पढ़ने कि न तो व्यवहाराभास होना चाहिए न निश्चयाभास होना चाहिए और दोनों को ठीक नहीं कर सकता है और अपनी कल्पित मान्यता अनुसार वो कुछ व्यवहार का भी अनुसरण करता है और कुछ निश्चय का अनुसरण करने का उसको भ्रम होता है, अनुसरण नहीं होता है निश्चय का उसको और बाह्य व्यवहार का अनुसरण करता है पूजा करते हैं तो उभिया वास्तव हो जाता है, ऐसा तो बहुत कम होगा लेकिन हमारे यहाँ हो सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ निश्चय का विषय काफी चला है, गुरु देव ने निश्चय पर जोर देकर के व्यवहार का बहुत जोर से निषेध किया है पर हम लोग भी व्यवहार को कभी इतना पूरा पूरा छोड़ के नहीं, हमारे यहाँ भी देखते हैं कि कौन पूजा में आते हैं कौन पूजा में नहीं बैठता है, कौन भक्ति करता है कौन भक्ति में नहीं बैठता है, कौन शास्त्र की स्वाध्याय कितना करता है कौन नहीं करता है, तो शुक्रिया की गिनती तो हमारे यहाँ होती है इसलिए हमने व्यवहार बिल्कुल छोड़ा है और निश्चय को उनकी घर किया नहीं तो हमारे यहाँ उभिया बाकी बहुत देते हैं दूसरी जगह इतना नहीं होते हैं, संप्रदाय में इतनी बात नहीं है, संप्रदाय में ज्यादा राधा पूजा जा रहा है ना देखा वो सब निश्चयाभाषी तो निश्चय का शास्त्र पढ़ने से कोई तोड़ नहीं जाता है और दोनों समझ करके फिर यथार्थता नहीं आती है तो निश्चयाभाषी निश्चयाभाषी की ज्यादा होती है जो कैसे करता है निश्चयाभाषा व्यवहार का ठिकाना अपन व्यवहार उचित व्यवहार नहीं है तो जनता भी नहीं है पसंद गुरुदेव के पसंद और इतने ज्यादा है कि कृपाल गुरुदेव के अनुयायी वर्ग में तो ये माहौल है तो सोनगढ़ वाले प्राय पसंद ये माहौल क्योंकि बात तो एक समय किसी को चले ऐसे नहीं करो और खाना खाने में बैठे तो उसका रस का ठिकाना नहीं दिखा पता चल जाए सुरक्षा था ना जो रसोड़ा संभालते थे, तो जब मैं खाना खाने के वक्त समय के लिए बैठा था वो संभालते थे, क्लास क्लास चलते थे, धार्मिक शिक्षण वर्ग चलते थे। एक आदमी वो वात्सल्य से अच्छे अच्छे रसोई जमा बनाते थे, लेकिन उनको ये पसंद नहीं था कि अच्छे रसोई बनने से कोई इसके लिए तीव्र वृत्ति हो जाए, वो तो कोई पसंद नहीं था। हम बैठे थे उसमें क्लास में, सब लोग आए तो उसमें पांच सात लोग इतनी जल्दी से दौड़ के दौड़ के आते थे अपनी जगह कर लिए, क्या उन्होंने संबंध किया कि देखिए तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं और खाना खाने के लिए कितने आते लेते हैं, उसमें तो मस्कर ही किया तो जो तत्व ज्ञान में दौड़ जाते हवा में तत्व तो ज्ञान में दौड़ जाते बात तो तत्व ज्ञान ही करती है, खाना खाने के लिए आते लेते हैं चने के साथ द्रव्यों पर्याय की बात करो, प्रकृति की भिन्नता की बात करो, और खाना खाने का तो प्रकृति की भिन्नता तो वहां पर रहनी चाहिए। अपनी यहाँ गयाभाषी भी है, व्यवहारभाषी भी है और निश्चय भाषी भी है, सब है। निश्चयाभाषी होता है उसको निश्चयाभाषी नहीं करना आसान है, उतना व्यवहारभाषी को व्यवहारभाषी क्यों, तो तीव्र कथा नहीं है ये मंदिर कथा वाला, तीव्र कथा इसे छूट सकता है, मंदिर कथा में तो संतुष्ट होना नहीं है। और उभया भाषी शब्दों को निकलना बहुत तकलीफ वाली बात है, क्यों तो उसको तो बहुत शक्ति होता है, मैं तो निश्चय को भी अनु सकता हूँ बाहर को भी अनुसरण करता हूँ, मेरे में तो कोई चीज नहीं, मैं पूजा भक्ति भी करता हूँ और आत्मा की श्रद्धा का भी अध्ययन विकल्प करता हूँ, विचार करता हूँ, ध्यान करता हूँ, निश्चय का ध्यान करता हूँ और शास्त्र का अध्ययन करता हूँ, पूजा भक्ति करता हूँ, दयादान करता हूँ, यात्रा भी करता हूँ, उसको वो ज्यादा करता है, उसको निकलना आसान खुद होता है। मैंने कोई जल्दी मौका दिया था निश्चय वाला ने कहा था पाप का मन की स्मरक मार दी, भगवान ने निषेध करो पाप का परिणाम के लिए स्मरक मार दिए भर के दुख की तो दिल्ली डरे थे, निश्चयाभाषी से दुख से तो डरता है और पाप का फल बहुत दुख है तो उनको तो निकालना आसान है, उनको तो नरक दिखाओ व्यवहारवासी तो अपने को सबसे सुप्रिय समझता है, निश्चयवासी और व्यवहारवासी दोनों के वो कमेंट करता है, दोनों के भूल निकालता है, उनको तो लगता है कि मैं तो मेरा प्रथम पूरा दोनों पर था आता है, ज्यादा से ज्यादा संतुष्ट हो जाता है। એના માટે તો આપણે આખી લાઈન સફાવટ કરી છે કે સૌથી પહેલા પૂર્ણ સિદ્ધિને ધ્યેય બાંધવું, પૂર્ણતાના લક્ષ્ય પ્રારંભ કરવો, સ્વરૂપ પ્રાપ્તિની મોક્ષ અભિલાષાની એટલી તીવ્ર ભાવના નદી કાલા નદી એવા પરિણામ જે ઉત્પન્ન થઈ જાય એનું નામ લક્ષ બાંધ્યું છે, લક્ષ બાંધ્યું હોય તો આવા પરિણામ સહેજે સહેજે થાય પ્રકૃતિ બુદ્ધિના, એ જીવને પોતાના પ્રયોજનની દ્રષ્ટિ કૃષ્ણને કૃષ્ણ જાગૃતિ વિશેષ અવલોકન કરી એ બધાના જે આનુષંગિક પરિણામો એક પાયો સરખો બંધાઈ ગયો તો આપોઆપ બધા પરિણામ ઉત્પન્ન થાય. મિત્રો વ્યવહારા ભાષી થાય, ભાષી થાય, તો રસ્તો તો છે, રસ્તો નથી ઉતારે વેદન સે નિશ્ચય હોતા પર અવલોકન નહીં હોય તો ક્યાં હાલત હોય કે શાસ્ત્ર કો પઢ કરકે વિચાર કર કરકે ધારણા કર કરકે નિર્ણય નહીં કરે નિરાત્મા ઇસે કોઈ પુરુષાર્થ કી જાગૃતિ ઓર સ્વરૂપ મહિમા કા સહજ રૂપ સે ઉત્પન્ન હોના દોનો બાત બનને વાલી કથન છે અપના વિપરીત અભિપ્રાય થી પુષ્ટિ નહીં કરવી ચાહીએ. કિસી ભી પ્રકાર કા શાસ્ત્ર કથન આતા હૈ ઉસમે અપના અભિપ્રાય થી પુષ્ટિ કરને કે લીએ ઉનકો નિમિત્ત નહીં બનાવે. ક્યા અભિપ્રાય યથાર્થ ગઢને કે લીએ યે સબ બાત હૈ, લેકિન ઇસ કથન કે સહારે અપના અભિપ્રાય જો બના લિયા હૈ ઉસકો પુષ્ટ કરના એ પ્રવૃત્તિ ઉચિત નહીં. શાસ્ત્ર અધ્યયન કી ગલતી એસે નહીં હોની ચાહિએ, શાસ્ત્ર અધ્યયન કરને મેં એસી ગલતી નહીં હોની ચાહિએ કે અપના અભિપ્રાય પુષ્ટ કર લેગા. તો વહાં કલ્પના કરેગા કે જ્ઞાની કો પતા ચલ જાતા હૈ, તો વહાં તો બાત દૂસરી અપેક્ષા સે કહી હૈ. પર ઉન્હોને એ અપેક્ષા ક્યાં કરી? દોસો 71 મે સફર પ્રકાશક કા નિષેધ નહીં હૈ તો અભિપ્રાય કહાં સે નિકલ ગયા? તો અભિપ્રાય બાંધ લિયા. તો જહાં ભી અપને અભિપ્રાય કી બાત આયેગી તો વો પુષ્ટ બન જાયેગી. યે અધ્યયન કી સહી પદ્ધતિ હૈ, અધ્યયન કી સહી પદ્ધતિ કે જહાં જો યોગ્ય હૈ વહાં ઉતના હી જાને, ઉતના હી માને, અપને અભિપ્રાય કો પુષ્ટ નહીં કર લે તો થોડી કલ્પના જ્યાદા હો જાયેગી, નહીં તો વિષય સે કુછ આગે ચલા જાયેગા જિસકો નયા ભાસ કહેને મેં બતા નહીં કહીં ભી. બહોત મધ્યસ્થ હોકર કે જહાં જો કહેને કા અભિપ્રાય ઓર મર્યાદા હૈ ઉતના હી માન લે, ઇસે જ્યાદા અપના અભિપ્રાય પુષ્ટ કરને કે લીએ જ્યાદા નહીં કર લે. आवास तो इसलिए होता है, देखो शास्त्र में गंधर्व सुनने को भावाता है ऐसा लिया, एकांत ऐसा नहीं है, उनको निषेध भी आता है। अभिप्राय नहीं बनना चाहिए, पहले स्वरूप निश्चय हो जावे बाद में सब यथार्थ चलेगा, क्योंकि लक्ष्य स्वरूप का है और पहले लक्ष्य आत्महित का होगा तो भी गलती नहीं होगी, क्योंकि उसमें वो बात खुली रहती है कि मेरे स्वरूप का निश्चय करना बाकी है। तो ये निश्चय नहीं हुए वहां तक, निश्चय होने का प्रयास में वो पड़ा है, जिज्ञासा में पड़ा है। जिज्ञासा का मतलब ज्ञान, ज्ञान को सत्य के लिए खुला रखना, क्या विचार की भूमिका में अवकाश रखना, सत्य को ग्रहण करने के लिए, स्थापन करने के लिए, उसी का नाम जिज्ञासा है। और जिसको व्यवहार की पुष्टि होती है उसको निश्चयाभास होने का डर लगता है, ये दूसरा सिम्टम लिया है। जिसको यथार्थता होती है उसको निश्चयाभास होने का डर नहीं लगता है। निश्चय पक्ष की बात आने से निश्चय का आभास का डर नहीं लगता, और व्यवहार पक्ष की बात आने से व्यवहार आभास होने का भी डर उसको नहीं लगता, दोनों में डर नहीं लगता, क्योंकि यथार्थता है, उसके परिणम में यथार्थता है। इस यथार्थता आगे बढ़कर के ही सम्यक को पाती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यथार्थता पहले आती है मुमुक्ष की भूमिका में, जो कारण है सम्यक का। तो यथार्थता मैंने क्या, हर जगह से आत्महित का दृष्टिकोण ही उसको आगे रहता है, पूर्व कोई भी बात हो, निश्चय की हो या व्यवहार की हो या प्रमाण की हो, हर जगह उसको अपना आत्महित ही मुख्य रहता है। तो कहीं आभास नहीं है, कोई डर भी नहीं लगेगा। समझ आया, पहले एक बात चली थी, कोई विचार आया, एक बात का स्मरण आया, कि जैन दर्शन में दया की प्रधानता है, दया मूल धर्म कहने में आता है, क्या दया की प्रधानता है। और देखिए श्रावक का जो जीवन चर्या है उसमें भी छकाई जीवों के हिंसा नहीं हो गए, अहिंसा जितनी हो गई थी, सावधानी यत्ना दरकार रखते हैं लोग, जैन संप्रदाय के अलावा उतनी सावधानी दरकार कहीं भी नहीं है। तो पहले तो देहात में गावड़े में क्या होता था, ये जो जलाने के लिए लकड़ा हो, लकड़ी हो गई, और गोबर के वो छाना बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं गोबर के छाना बोलते हैं, तो जो जैन का घर हो गए तो क्या कहो, तो कोई जितनी जिसकी शक्ति, कोई 15 दिन का खरीद लेते, कोई महीने भर का खरीद लेते हैं, कोई 4-6 महीने का भी खरीद करके एक जगह रख लेते हैं, कोने में या कमरे में रख लेते हैं, पर जहाँ वहाँ वो चीज रहती है लकड़ा और छाना जलाने वाली, वहां तो कोई साफ सुथरी होती नहीं, वहां साफ सुथरी होती नहीं, हर जगह अपनी जो साफ सुथरी करते हैं वहां तो जो चींटी है, मकोड़ा है, छोटे मोटे जीव जंतु है वो तो निकल जाते हैं कचरे कूड़े में, और वहां तो कचरा कूड़ा साफ होता है रोज, सबको क्यों उठा, कैसे उठा रहे, वो तो महीने में 2 महीने में वो कोना साफ किया जाता है या कमरा साफ किया जाता है। तो जब भी वो जलाने के लिए ले, तो उसको देखो कि कहीं यहाँ पर चींटियां तो नहीं चल रही है, कोई जीव जंतु तो नहीं चलता है, और दिखने में नहीं आवे तो उसको ऐसा कर कि हमारे देखने में नहीं आता है लेकिन दूसरी साइड में चलता हो, हमारी साइड में नहीं चलता हो तो फिर जाएगा कि उसको चूल्हा में रखा टुकड़े करने में तो क्या है जो वो तो जगह का एक सवाल है क्योंकि चूल्हा में रखने के लिए आसानी हो गए या चूल्हे में रसोई करने भी इतना लंबा लकड़ा हो गए तो, लेकिन जो छाना है उसमें तो टुकड़ा करने की जरूरत नहीं, वो तो पूरा का पूरा रह सकता है बड़ा चूल्हा में, छोटा चूल्हा तो टुकड़ा करना पड़े, लेकिन उसको ऐसा करके फिर रख रहे हैं। दया के प्रधानता है ना अपने, तो फिर सुना कि ये समय सार एक ऐसा शास्त्र है, समय सार देखा भी नहीं था, पढ़ा भी नहीं था मैंने, उसमें ऐसा आता है कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो हम लोग मुख से साथ में बैठ करते सत्संग करते थे, उसमें चर्चा चलती थी, तो स्थानकवासी की प्रधानता में दया, स्थानकवासी में दया की प्रधानता वो ज्यादा कर लेते हैं, मंदिर भी नहीं बनवाते हैं तो दया की प्रधानता का चल रहे कुछ और पकड़ते हैं, उपासना तो बनाते मंदिर नहीं बनवाते। तो जो स्थानकवासी थे पक्ष वाले ये बोले कि स्वयं साथ तो कभी नहीं पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ना कि उसमें आता है ऐसा सिद्धांत एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं कर सकते, दया पूरी उठ जाएगी, दया ही खत्म हो जाएगी, अपना धर्म ही खत्म हो जाएगा, जैन धर्म ही नहीं रहेगा। देखो तो क्या दो द्रव्य की भिन्नता दया को खत्म करने के लिए उद्दिष्ट है?
नहीं,
उसका उद्देश्य इसलिए आया है कि दो द्रव्य की भिन्नता वितरकता को पैदा करने के लिए, किसी द्रव्य पर तुम राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो, तेरे से भिन्न है। जब दोनों बात साथ में आई तो उससे लाइट हो गई, वो उल्टा लेता है, जो कहता है कि दया खत्म हो जाएगी ये बात उल्टा लेता है, वहां उपदेश करने समय सार का उपदेश करने वाले का उद्देश्य वो है ही नहीं, दया को खत्म करने का उद्देश्य वहां है ही नहीं, वहां वितरक करने का राग छुड़ाने का उद्देश्य है, उसको गलत विचार आता है, हमेशा पढ़ के उसको विचार आता है वो
गलत
है, ऐसा कहीं भी गलत उल्टा विचार नहीं आना चाहिए, एक जगह से दो बात उल्टी सुलटी दोनों निकलती है, हम सुलटी कब लेंगे और उल्टी कब नहीं लेंगे कि हमारा ध्येय जो ठीक होगा परिपूर्ण करना, कहीं नहीं कहीं पढ़ने का हजार ठिकाना है, चढ़ने का एक ही रास्ता, ये बात हो जाएगी, ऐसे बहुत होता है।
देव जी महावीर